आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं। गीतकार शैलेंद्र के बारे में कितना भी कहा जाए वो कम ही रहेगा। उन्होंने फिल्मी गीतों में एक साहित्य दिया, भारत को विदेशों की धरती पर पहुंचाया। ये वो गीतकार थे जिन्होंने साहित्यकार रेणु की कहानी पर फिल्म बनाई। तीसरी कसम, बात 1966 की है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई और 14 दिसंबर 1966 के दिन शैलेंद्र ने इस दुनिया को विदा भी कह दिया। और बाद में लीक से हटी इस फिल्म तीसरी कसम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई और अब ये एक क्लासिक फिल्म है। आज बात की है शैलेंद्र जी के बेटे दिनेश शैलेंद्र जी के साथ, जो स्वयं भी फिल्म निर्देशक हैं। उनके पास अपने पिता को लेकर क्या यादें हैं तो वो बताते हैं।
देखिए, हमें तो बहुत कम समय मिला उनके साथ बिताने का,
जी
सिर्फ 10 साल, लेकिन इतना तो हम सरल तो थे ही
जी।
अब ऐसा था कि जब तक हम पैदा हुए थे तब तक तो बहुत ही सक्सेसफुल हो चुके थे वो, और अपना खुद का बंगलो भी खरीद लिया था और ऐसी कोई कमी नहीं थी किसी बात की
जी।
और तो पर एक बात हम कहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो जितनी बार हम लोगों को तो बहुत मजा आता था डाइनिंग टेबल पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग,
क्या बात है जी।
लेकिन आई कैन लिटरली काउंट ऑन माय फिंगर्स द नंबर ऑफ टाइम्स ही वुड हैव जॉइंड अस ऑन द डाइनिंग टेबल, यू नो। वो हमेशा जमीन पर ही बैठ कर खाते थे और हम लोग भी साथ में बैठ जाते थे उनसे। और वो बताते थे कि ये हमारी जगह है और यू नो नेवर लीव द ग्राउंड, स्टे यू नो, जो हमने बचपन में जितनी गरीबी देखी है वो, और वो बार बार अपने जो बचपन में उन्होंने गरीबी देखी थी उसके बारे में हम लोगों को बताते थे, ताकि हम लोग यू नो हम दैट वी वुड नॉट थिंक दैट वी आर टू बिग और एनी सच।
जी बिल्कुल वही बात है कि जमीन से जुड़े रहने की बात जो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सब देखा था और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह आप उन चीजों को भूल जाएं, बच्चे भूल जाएं या घर का परिवार जो है भूल जाए। जो हालात थे और जिस तरह से उन्होंने अपना नाम कमाया वो सभी जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उनको कोई शौक नहीं था फिल्मों में गीतों को लिखने का, और राज कपूर जी के साथ उनकी मुलाकात हो गई, कुछ हम जानते हैं उसके बारे में, लेकिन आप बताएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा।
थोड़ी सी लंबी है, अगर आपको इतराज ना हो तो हम बता दें।
जी बिल्कुल बताइए जी।
सबसे पहले एक कवि सम्मेलन में राज कपूर ने उन्हें सुना था, एक उनकी कविता थी बाबा की, जलता है पंजाब नाम। तो जब राज कपूर ने सुना तो वो ऑडियंस में से उठ के आए, ऐसे ही पोएम खत्म हुई, और वो उन्होंने बाबा से कहा कि मैं पृथ्वीराज कपूर का बेटा हूँ, मैं अपनी पहली फिल्म आग बनाना जा रहा हूँ जो पार्टीशन के बारे में है। तुम्हारी कविता भी पार्टीशन के बारे में थी और मुझे लगता है कि तुम बहुत अच्छे गीत लिख सकोगे, तो मेरी फिल्म आग में गीत क्यों नहीं लिखते। तो बाबा ने उसी वक्त उनसे कहा कि मैं लोगों के लिए लिखता हूँ, मैं जो भी मैं लिखता हूँ मैं बेचता नहीं हूँ, मेरे गीत बिकाऊ नहीं। और वो तो राज कपूर ने बोला कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, जब अगर मन करे तो आ जाना मिलने कम से कम। तो बाबा ने विजिटिंग कार्ड अपने पॉकेट में डाले और चल दिए। कुछ महीनों बाद ऐसा हुआ कि हमारी मम्मी प्रेगनेंट थी, हमारे सबसे बड़े भाई साहब पैदा होने वाले थे।
अच्छा।
और कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी
जी,
और पैसों की सख्त जरूरत थी, और बाबा को कुछ समझ में नहीं आना था। इतने में उनके हाथ वो विजिटिंग कार्ड आया राज कपूर का।
हाँ।
तो वो राज कपूर के पास उनके ऑफिस चले गए, तब आरके स्टूडियोज नहीं बना था।
हाँ।
और उनके ऑफिस फेमस महालक्ष्मी जो स्टूडियो है
जी,
वहाँ ऑफिस था राज कपूर का। तो वो गए और उन्होंने राज कपूर को सीधा ही पूछा कि पहचाना आपने, बोला हाँ तुम तो कवि हो, कहो कैसे आना हुआ। तो बाबा ने बताया कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और कुछ कॉम्प्लिकेशन है और मुझे इस वक्त 500 रुपए की सख्त जरूरत है, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं? तो राज कपूर, मतलब आप सोच सकते हैं 1948 में 500 रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती
है। बिल्कुल।
और राज कपूर के खुद के पास 300 रुपए थे, उन्होंने अपने ऑफिस बॉय को बगल वाले ऑफिस में भेजा। हाँ। बोला उनसे बोलो 200 रुपए मुझे चाहिए अभी और कल मैं लौटा दूंगा। और बाबा ये सब देख रहे थे और बाबा ने कहा कि मैं नौकरी तो छोटी करता हूँ लेकिन जल्दी से जल्दी मैं लौटा दूंगा पैसे। तो राज कपूर ने बोला वो सब बातें बाद में होंगी, तुम अभी पैसे लेके जाओ अपना काम करो। और बाबा वो 500 रुपए ले गए। कुछ हफ्ते बाद वो आए और पैसे लौटाने।
अच्छा।
और जैसे ही उन्होंने राज कपूर के हाथ में वो 500 रुपए रखे तो राज कपूर ने लेके और वापस उनकी जेब में रख दिए।
अच्छा।
बाबा के। और कहा कि आपने क्या मुझे मनी लेंडर समझा हुआ है कि मैं पैसे दूंगा और आप लौटाएंगे और मैं इंटरेस्ट मांगूंगा, आप इंटरेस्ट दे दीजिए पैसे का, मैं मनी लेंडर नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा पर पैसे तो लौटाने हैं। तो राज कपूर ने कहा हाँ पैसे लौटाने हैं तो ठीक है, मेरी फिल्म बन रही है बरसात, उसमें 9 गाने हैं टोटल, 7 गाने हो चुके हैं, 2 गाने बाकी हैं, दोनों लिख दो तो 500 रुपए बराबर हो जाए। तो बाबा ने बोला ठीक है, 2 गाने, एक तो पहला था बरसात में हमसे मिले दो और दूसरा था पत्नी कमाल है देखी। हाँ। और इस तरह अब बरसात बहुत ही बड़ी हिट हुई थी और राज कपूर ने जमीन भी खरीद ली थी आरके स्टूडियोज बनाने के लिए। और उनकी नेक्स्ट फिल्म थी आवारा के लिए वो बार बार बाबा से बोलते कि इस फिल्म में गाने आप लिखते। तो बाबा ने बोला कि मैंने आपके 500 रुपए लिए थे वो लौटा दिए। बाबा ने बोला कि हम अपने रेलवे की नौकरी नहीं छोड़ेंगे। हाँ। और हमको नहीं इंटरेस्ट। तो राज कपूर ने बोला ठीक है, कविराज वो बोलते
थे
कविराज एक काम करो कहानी तो सुन सकते हो। तो बाबा ने बोला हाँ ठीक है कहानी सुन सकते हैं। तो राज कपूर अपनी गाड़ी में बैठा के बाबा को ले गए कि ए अब्बास के घर, जो बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे
जी,
और आवारा फिल्म लिख रहे थे के अब्बास। तो वहां पहुंचे तो अब्बास साहब ने बाबा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब वेरी ऑर्डिनरी लुकिंग मैन विद वेरी ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो वो समझे कोई असिस्टेंट होंगे, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो अब्बास साहब ने पूरे 2.5 घंटे उनको लगे पूरा नरेशन स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने सुनाया आवारा का। और जैसे ही खत्म हुई तो उन्होंने राज कपूर की तरफ देखा रिएक्शन के लिए कि कैसी लगी। तो राज कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने बाबा की तरफ मुड़ के कहा कि कविराज तुम क्या कहते हो? तो बाबा ने कहा कि अच्छी स्टोरी, इस पे फिल्म बननी चाहिए। तो राज कपूर ने बोला कि मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? तो बाबा ने कहा गर्दिश में था, आसमान का तारा था, आवारा था। और अब्बास साहब एकदम चौंक गए, बोले इसका आदमी का नाम बताओ। तो राज कपूर ने बोला कि नाम क्यों पूछ रहे हो आप? तो बोले कि इस आदमी ने मेरी 2.5 घंटे की फिल्म एक लाइन में बोल दी है।
क्या बात है जी, बिल्कुल।
और फिर राज कपूर ने समझाया बाबा को कि देखो कितनी आसानी से तुमने बैठे बैठे मतलब स्टोरी सुनी और तुम्हारे दिमाग में एक गाने का मतलब मेरे टाइटल सॉन्ग बन चुका है, तुमने लिख दिया है, कैन यू इमेजिन?
तो
फिर बहुत कन्विंस किया और फिर आवारा में बाबा ने गाने लिखे और उसके बाद आवारा के रिलीज के बाद ही उन्होंने अपने रेलवे की नौकरी छोड़ी
जी। और उस आवारा के उस गाने ने देखिए भारत को विदेशों में उसकी एक अलग ही पहचान बना दी। राज कपूर साहब तो की भी पहचान बनाई। मुझे याद है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि विजय आनंद जी ने कभी लिखा था कि लोग कहते हैं कि राज कपूर ने शैलेंद्र को बनाया, लेकिन विजय आनंद जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि राज कपूर के करियर को बनाने में शैलेंद्र जी का हाथ था।
अभी कुछ
जी
एक 1.5 साल पहले स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो बॉम्बे बेस्ड है उन्होंने बाबा को अवार्ड दिया था फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा
जी
और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उसके लिए रणधीर कपूर आए थे। रणधीर कपूर ने स्टेज पे खड़े होकर ये कहा था कि जो भी मतलब हम लोगों को हमारी कमाई हो रही है, मतलब हम हमारे भाई और हमारी बहन, हम लोग ऑडिट्स में बैठे थे, बोले इनके फादर की वजह से हमारी कमाई हो रही है आज तक, जो हम लोग जितना भी कमा रहे हैं, जो भी हो रहा है
जी।
क्योंकि मैं बहुत ही सेफली कह सकता हूँ कि अगर शैलेंद्र नहीं होता तो राज कपूर नहीं होता, रणबीर कपूर ने खुद कही
जी। और यही बात विजय आनंद जी ने कही उसी पे, क्योंकि विजयानंद जी की भी मुझे बात याद आ गई कि गाइड में शैलेंद्र जी सेकंड चॉइस थे उनके, और एक ही झटके में जो उन्होंने लिखा, क्या वाकई वो दुख हुआ था कि वो सेकंड चॉइस हैं?
बिल्कुल, एकदम से एसडी बर्मन का फोन आया
जी,
और उन्होंने कहा कि बाबा को कि मतलब जल्दी आ जाओ हमारे मतलब सन एंड साइन होटल में, और विजयानंद और देवानंद मिलना चाहते। तो बाबा समझ गए बात क्या है, तो पहले टालने की बोला दादा अभी रात रात के टाइम तो मैं घर से निकलता नहीं हूँ। तो बर्मनदा ने बोला नहीं मैं बुला रहा हूँ अभी आओ। तो वो चले गए और उन्होंने पूछा कि क्या बात, तो उन्होंने बोला हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं गाइड, और जिसमें हमने दो गाने रिकॉर्ड कर लिए हैं किसी और राइटर के साथ, वर्ड्स पसंद नहीं आए, और आपको जो लगा है कि हम हमारे उस राइटर के साथ इस फिल्म में तो खास तौर से हमारी नहीं जमेगी। तो बाबा ने बोला कि वो बात तो ठीक है, लेकिन अब वो टालना चाह रहे थे क्योंकि उनको गुस्सा आया था कि वो सेकंड चॉइस हैं। उन्होंने कहा कि वो तो सब ठीक है लेकिन आजकल मैं पैसे बहुत ज्यादा लेता हूँ,
अच्छा
तो आप लोगों को तकलीफ होगी। तो उन्होंने पूछा कि कितने पैसे, और आप मानिए हमारी बात कि उस वक्त किसी राइटर की हिम्मत नहीं हुई होगी उतने पैसे मांगने की, जो आज के डेट में अगर प्रॉपर्टी और गोल्ड के प्राइसेस अगर कंपेयर करें आप 64 और आज के डेट पे, तो इट वुड वर्क आउट इनटू अ कपल ऑफ करोड़ रुपीस। तो वो उन्होंने सोचा कि ज्यादा पैसे मांगेंगे तो ये घबरा के भाग जाएंगे, और हमें भी अच्छा नहीं लग रहा कि आई एम सेकंड चॉइस और मैं किसी और का काम छीन रहा हूँ। तो अब वो हुआ ये कि देवानंद और विजयानंद ने आपस में पुसर पुसर की और बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग एग्री हो गए इतने पैसे। तो फिर बाबा ने बोला अच्छा ठीक है अब स्टोरी सुना। दोस्ती तो थी लेकिन वो एक वो था कि मतलब सेकंड चॉइस वो उनको अच्छा नहीं लगा था।
जी बिल्कुल, देखिए एक राज कपूर जी के साथ जब उन्होंने फिल्म की बरसात तो टाइटल सॉन्ग लिया उसका, और कहां से कहां उन्होंने पहुंचाया, और फिर जब उन्होंने देव साहब के साथ काम किया तो गाइड ने तो एक अलग ही इतिहास बनाया।
बिल्कुल बिल्कुल,
उनकी लेखनी की बात ही अलग थी, वो कह सकते हैं कि जैसे एक पेंटिंग होती है ना, सब रंग थे उनमें।
बिल्कुल, और बहुत ही खास बात उनकी थी कि वैसे तो आप एक गाना कोई भी उठा ले उनका तो आपको एक तो आपको मीनिंग बहुत ही सरल सा मीनिंग आपको मिल जाएगा
जी,
लेकिन उसका सर्किल थोड़ा सा स्क्रैच करके आप अगर एक लेयर हटाए तो आपको कुछ और मिलेगा। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, जैसे मेरा जूता है जापानी जो 420 का गाना था
जी,
तो उसमें उस गाने के एक वर्स में वो बोलते हैं होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब तक करे इरादे। अब इसका तो आप ऊपर का मीनिंग आप समझ गए, मतलब ठीक है, बट नाउ लुक एट द टाइम, इट इज अ न्यू इंडिया दैट इज इमर्जिंग यू नो, और इंडिपेंडेंस के थोड़े कुछ साल बाद की बात है, और वो मोनार्की जो इंडिया में थी वो हट चुकी है, अब डेमोक्रेसी है। तो व्हाट ही थिंक इज वो सिंहासन अब दिल्ली में है, वो अब इट इज अवेलेबल इवन टू द कॉमन मैन यू नो
जी।
तो यू नो यू कैन टेक दैट सॉन्ग एज मतलब उस लाइन का वो मीनिंग भी ले सकते हैं यू नो। तो ऐसे हर गाने में उन्होंने कोई ना कोई मतलब ऐसा कुछ यू नो लेयर्स में वो लिखते थे, तो वो उनकी खास बात।
और उन गानों की शेल्फ लाइफ इसीलिए है क्योंकि उसमें बहुत लेयर्स हैं, और वो सिर्फ हमें खुद सोचना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कब फिट हो रहे हैं।
बिल्कुल करेक्ट
जी। तो दिनेश जी, कितनी ही बातें हैं जो आपके पास तो खजाना है उनकी यादों को लेकर, उनकी यादों को हमारे साथ आपने बांटा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात कर कर, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको देना चाहूंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद, और मतलब हमारे पास तो पूरा खजाना है जैसे आपने कहा
जी,
तो आइंदा भी कभी आपको मतलब मौका मिले तो आप आगे बढ़ाएंगे इस बात को।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।